31 से 38 तक में कोई तात्पर्य नहीं है, तो पहले मैं श्लोकों के अनुवाद पढ़ लूंगा और फिर 29 ये श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 31। प्रसंग ये है कि कश्यप मुनि अपनी भार्या अदिति माता को पयोव्रत की पूजा विधि समझा रहे हैं। अदिति जी बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके सारे संतान देवतागण को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है, वो इधर उधर छिप रहे हैं और उनके पास कोई भी आश्रय नहीं है, और उस दुख में वो अपने पति की शरण लेती हैं और उनके पति कश्यप मुनि उनको ये परामर्श देते हैं कि वो भगवान की शरण ग्रहण करें, और वो कहते हैं कैसे शरण ग्रहण करनी है तो उसको विस्तार में समझा रहे हैं। तो कश्यप मुनि बता रहे हैं कि इस ढंग से आप पूजा कीजिए। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जिनके दो सिर प्रायणीय तथा उदानीय, तीन पांव सवंत्रय, चार सिंह चारों वेद तथा सात हाथ सप्त छंदस यथा गायत्री हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जिनका हृदय तथा आत्मा तीनों वैदिक कांडों कर्मकांड, ज्ञानकांड तथा उपासना कांड है, और जो इन कांडों को यज्ञों के रूप में विस्तार देते हैं। हे शिव, हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आधार, समस्त ज्ञान के भंडार तथा समस्त जीवों के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इसमें एक भक्ति का तात्पर्य है, भगवान के अंश या अवतार को नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक है। अगला श्लोक, हिरण्य गर्भ रूप में स्थित जीवन के स्रोत प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आदि भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित साक्षी तथा मनुष्य रूप में नर नारायण ऋषि के अवतार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक संख्या 35। हे पिताम्बरधारी भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को वक्ष में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ, आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर है वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। सारे देवता तथा लक्ष्मी जी भी आप उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। निसंदेह वे सभी उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो। कश्यप मुनि ने कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण तथा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं पाते तथा अर्थ्य अर्पित करके केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आज का श्लोक है श्लोक संख्या 39। अर्चित्वा गंधमालात्यै पयसा संप्रयेद् विभुं वस्त्र उपविद्ध आभरणा पाद्य उपस्पर्शने स्तदा गंधधूपादेभिः चार्चे द्वादल अक्षर वेद्या गंध धूप पूजा आदि विचार्चे द्वादश अक्षर वेद्या धन्यवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की अर्चित्वा इस प्रकार पूजा करके गंध माल्य आदि अगरु फूल की माला आदि के द्वारा पयसा दूध से स्नापये नहलाएं विभुम भगवान को वस्त्र वस्त्र उपवीता जनेयू आभरण गहने पात्या चरण कमलों को धोने के लिए प्रयुक्त जल उपस्पर्शने स्पर्श द्वारा तथा तत्पश्चात गंध सुगंध धूप धूपबत्ती आदि भी इत्यादि से च तथा अर्चे पूजा करके द्वादश अक्षर विद्याया बारह अक्षर वाले मंत्र से अनुवाद सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल माला अगरु द्वारा आदि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें समुचित वस्त्र यज्ञोपवीत जनेयू तथा गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प अगुरु तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य द्वादश अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्च विग्रह की पूजा करते हुए भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाए और पाद्य अर्ध्य वस्त्र गंध माला आभरण भूषण आदि अर्पित करे। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु नरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है विशेष कर हिज होलीनेस भक्ति माधव गोविंद साहिब महाराज जी से। याचना करता हूँ कृपा के और आप सब भक्तों से। तो अतिथि माता जी को कश्यप मुनि पयोव्रत बता रहे हैं और हम आगे जाके देखेंगे कि अतिथि माता अपने पति से जो उन्होंने अपने गुरु से जो आदेश सुने हैं उसका बहुत दृढ़ता से पालन करती हैं और बहुत ही कम समय में 12 दिनों में ही उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। केवल 12 दिनों के तपस्या के बाद स्वयं भगवान वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं। तो कितना ये होप गिविंग ये प्रसंग है, केवल 12 दिन तपस्या की और भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। इसी ढंग से देखते हैं कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को विधि बताई, ध्रुव महाराज ने पूरी दृढ़ता से उसका पालन किया। 5 साल के बालक थे मधुवन में जाके और 6 महीने में भगवान से मुलाकात हो गई, फेस टू फेस बातचीत में। और कौन से उदाहरण याद आते हैं आपको शास्त्रों में? चित्रकेतु जी, चित्रकेतु जी बहुत दुखी थे अपने पुत्र के मृत्यु के बाद। नारद मुनि वहां पर आए, उनको समझाया, उस पुत्र को पुनः जीवित कर दिया, उनसे सुना, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उनको कुछ मंत्र दिए नारद मुनि जी ने, उनका उन्होंने उच्चारण किया, 1 सप्ताह के अंदर ही वो विद्याधर पति बन गए, विद्याधर लोक के स्वामी। और आगे बता रहे सूत गोस्वामी जी, कुछ ही दिनों में उनकी भगवान से भेंट हो गई, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया कुछ ही दिनों के बाद। तो जब ये बातें हम सुनते हैं तो हमें लगता है तो हमें तो इतने साल हो गए, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये कैसे। फिर हम पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के 10वें 11वें श्लोक में कि जो राधा कुंड में एक बार स्नान कर ले उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, कैसी बात है? यहाँ तो 12 दिन लगे, वहां तो बड़े एक डुबकी लगाने मात्र से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये बातें जो शास्त्रों में बताई गई है, जो प्रसंग आते हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, ये सत्य है, वास्तविकता है। कैसे समझे इन बातों को? कहे देखिए, जिसने राधा कुंड में एक बार स्नान कर लिया, और ये आता है वर्णन आखिरी श्लोक में, 11वें या 10वें श्लोक में आता है। तो उसका अर्थ ये है उस स्थिति तक जो राधा कुंड में उस वहां पर रहता है वो भाव की स्थिति तक पहुंच गया है, और भाव का अर्थ है कि प्रेम की पहले बस, प्रेम की शुरुआत। तो जो इस स्थिति में है उसका एक डुबकी से ही काम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को कई बार डुबकी लगानी पड़ेगी अपने आप को शुद्ध करने के लिए। खैर, डुबकी लगाने की अलग तरीके हैं, कई लोग डुबकी लगाते हैं, कई बार आचमन करके ही स्नान कर लेते हैं, दोनों ही ठीक है, जैसा जिससे अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त हो। इसी ढंग से हम देखते हैं, एक बार रामाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, उन्हें अपने महाप्रसाद फेंका और एक मछली ने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया और सभी के सामने उस मछली ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उनके शिष्य परेशान, गुरुदेव हम आपका रोज महाप्रसाद पाते हैं, हमारे तो अभी तक 2 बाजू हैं, ये मछली जीव उसमें लोअर स्पीसीज में है, निम्न योनि में, आपका महाप्रसाद बात चतुर्भुज रूप कैसे? इसी ढंग से यमुना माता जी ने एक बार कहा कि अगर कोई महाप्रसाद का एक ग्रहण एक मॉर्सल भी प्राप्त कर लेगा तो वो सही चेतना में आकर तो वो चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग ले रहा है। केवल महाप्रसाद का थोड़ा सा एक ग्रह खाने से ही हम चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग ले लेते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हम इस साधना भक्ति का किस चेतना में पालन करते हैं। परम पूजनीय शिवराम साईं महाराज अपनी पुस्तक शुद्ध भक्ति चिंतामणि में लिखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को हमें बहुत कॉशियसली और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। कॉशियसली मतलब सावधानी से, और कॉन्शियसली मतलब पूरी चेतना के साथ। अगर सावधानी से और पूरी चेतना के साथ इसका पालन नहीं करते हैं तो ये केवल एक रिचुअल रह जाता है, एक रीत रह जाती है, और उसको बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तदु न पाई कृष्ण पदे प्रेम था। प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, प्रोसेस तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम लोग जिस ढंग से इसको प्रैक्टिस करते हैं कई बार तो वो जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाता। कल शुक्रवार को श्रीला प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि ये जो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, पवित्र करने वाला जो प्रोसेस है, इसको हमें मदद करनी चाहिए, इसकी सहायता करनी चाहिए। We should help this purifying process by which, by what? by avoiding offenses. अपराधों से बचकर ये जो purifying process है, जो साधना भक्ति की जो विधि है, इसको हम सशक्त बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है. जितनी हमारी श्रद्धा और हमारी आसक्ति में इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, उतनी ही साधना भक्ति प्रभावशाली होगी. कितनी उत्सुकता है हमारे अंदर अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए. हमारी साधना भक्ति में तीन 3S, साधु, साधना और साध्य, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. साधु, साधना और साध्य. अदिति माता ने जो कश्यप मुनि से ये पूरी विधि प्राप्त की, उन साधुओं में उनकी पूरी श्रद्धा, श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, जिनसे वो प्रोसेस प्राप्त हो रहा है, भक्ति लगा बीच मिल रहा है, उसमें पूरी श्रद्धा. साधु, साध्य, क्या प्राप्त करना है उसके लिए पूरी तीव्रता, पूरा डिटर्मिनेशन, और साधना जो विधि बताई गई है उसको पूरे ढंग से पालन करना. इन तीनों के महत्व को समझना, इन तीनों के आपस के संबंध को जानेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे. ब्रह्मा जी ने हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तब जाके उनको भगवान और भगवान के धाम के दर्शन हुए. तो भागवतम के दूसरे स्कंध में जब भगवान के उनके दर्शन हुए, तो भगवान ने उनको कहा, प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, तपो में हृदय साक्षाद आत्माहम तपसो नख. हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था. ऐसी तपस्या ही मेरी हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है. यानी कि जो विधि ब्रह्मा जी को भगवान ने बताई, ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से मोहित थे कि मैं कहां से उत्पन्न हो रहा हूं, पूरे सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं गर्भोदक सागर के बीच में, वो अकेले एकमात्र जीव, कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा, और ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे, असमंजस में थे, वो बार बार कमल की नाल में ऊपर नीचे जा रहे थे कि मुझे करना क्या है, मैं कहां से आ रहा हूं, ये सब क्या है. तब गर्भोदक श्री विष्णु ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया, तप तप. और फिर ब्रह्मा जी ने बिना समझे, बिना कुछ पूछे कि कहां से आवाज आ रही है, उसको तपस्या किया, उसका पालन किया हजार दिव्य वर्षों तक, और फिर भगवान के और भगवान के धाम के उनको दर्शन हुए. और फिर भगवान को जब उनके दर्शन हुए, भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, फर्स्ट शेक हैंडशेक ऑफ द क्रिएशन, और उनको बोला विश यू ऑल द बेस्ट, आप क्रिएशन शुरू कीजिए. और फिर ये बताया कि मैंने तुम्हें तपस्या करने को कहा था, और ऐसी तपस्या ही मेरे हृदय और मेरी आत्मा है, और तपस्या मुझसे अभिन्न है. यानी कि भगवान से या प्रमाणिक गुरु से जो हमें साधना की विधि मिलती है, वो साधना की विधि भगवान से अभिन्न है. इसलिए जितनी दृढ़ता से और श्रद्धा से, जितनी आसक्ति से हम इस साधना भक्ति से आसक्त होंगे, उतनी जल्दी ये भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे और हमारे हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे. हमें साधना विधि को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए. तीन भक्ति बताई गई हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति. साधना भक्ति है हमारे शुद्धिकरण के लिए, भाव और प्रेमा भक्ति है रैलिश करने के लिए. क्या बोलेंगे रैलिश? आस्वादन करने के लिए. तो हम क्या करते हैं, साधना भक्ति में आस्वादन करने का प्रयास करते हैं, तो वो आस्वाद कुछ तो होता है लेकिन टेम्परेरी, लेकिन बाद में हमारा फिर धीरे धीरे श्रद्धा कम हो जाती है प्रोसेस में. तो यहां अदिति माता ने पूरी दृढ़ता से पालन किया, और जब हम दृढ़ता दिखाते हैं तो अपने आप हम जो भगवान की शक्तियों को आकर्षित करते हैं, कृपा को आकर्षित करते हैं. तो पूरी दृढ़ता से पालन किया और 12 ही दिन में उनको भगवान के दर्शन हो गए. तो साधु, साधना और साध्य, ये तीनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम इस साधना भक्ति में जुड़ते हैं. पहले दिन से हम बता दिया था कि हमारा साध्य क्या है, कृष्ण प्रिय है ना, बस बोलते हैं, लेकिन हमें सोचें क्या हमारा साध्य है. श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि इस जीवन में सबसे समस्याओं का कारण, सभी की समस्याओं का कारण है दूषित जीवन का लक्ष्य, पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का प्रयोजन दूषित है, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करना है, तो इस संसार की कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और उसके लिए पूरे दृढ़ संकल्प है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित है, इसलिए हमारे लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण समस्या ही समस्या है। पदम पदम यत विपदम। और फिर श्री प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि इस जीवन के लक्ष्य को शुद्ध कैसे किया जाए। हम बता रहे हैं, जीवन को लक्ष्य को शुद्ध कर सकते हैं सफिशियंट एंड प्रॉपर हियरिंग, भरपूर मात्रा में और सही तरीके से श्रवण करना, भरपूर मात्रा में। यह नहीं कि कभी 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 मौसम ठीक हुआ तो श्रवण कर लिया, कभी मन में बात है तो श्रवण कर लिया। भरपूर मात्रा में नियमित रूप से श्रवण करना और सही एटीट्यूड के साथ, मनोभाव के साथ श्रवण करना। क्योंकि श्रवण करने से हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होता है कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, भगवान क्या है, अपने भगवान का प्रेम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां इस श्लोक में, आज के 47वें श्लोक में मुख्यतः दो साधना की विधियों का वर्णन किया गया है। एक तो भगवान के नामों के उच्चारण करना और दूसरा भगवान के विग्रह की पूजा करना, डिटी वर्शिप और चैंटिंग। ये दो साधना की मुख्य विधियां हैं। इन दोनों की, दोनों साधना की विधियां बहुत प्रभावशाली होंगी जब हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा। जब संबंध ज्ञान क्लियर होगा कि ये अर्च विग्रह क्या है, मैं कौन हूं, कैसे अर्च विग्रह की पूजा करनी है, ये भगवान का पवित्र नाम कैसे है, इससे मेरा क्या संबंध है, जब संबंध ज्ञान स्पष्ट होता है तो साधना में प्रभाव आता है। तो इन दो विधियों के ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, कैसे हम अर्चन विधि को और हरि नाम के जप की विधि को बहुत ही सावधानी से और चेतनापूर्वक कर सकते हैं, कॉशियसली और कॉन्शियसली कर सकते हैं, जिससे कि हम इसके पूरे प्रभाव को प्राप्त करें और इस अपने जीवन में ही हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले अर्चन विधि को लेते हैं। तो वैसे तो कलयुग में बताया गया हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि अर्चन विधि की क्या आवश्यकता है, हम तो सारा दिन हरि नाम ही लेंगे तो बाद में, और हरि नाम तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये तो किसी पर निर्भर है नहीं करता, तो फिर हमें अर्चन करने की क्या आवश्यकता है, बता सकते हैं कोई, क्या जरूरत है अर्चन की? रिलेशनशिप तो हरि नाम से हो जाएगा।
Yes. It increases the personalism because you have a form, murti, you have a form in front of you, and when you serve the deity, there's reciprocation, and your heart opens up. The deity reciprocates because they're not statues, so the heart opens up.
Yes, Maharaj. Thank you very much. Maharaj ne bahut acha bataya ki jab hum archan vidhi karte hain, to ek personalism aata hai, bhagwan ke vyaktigat roop ki hamari jaan pehchan hoti hai. और डीटी हमारे से आदान प्रदान करते हैं और इससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने ये बताया, शिला प्रभुपाद ने बताया कि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, बद्ध अवस्था में हमारा हृदय बहुत अशुद्ध है और भगवान के पवित्र नाम का जप कोई मुक्त जीवात्मा ही कर सकती है। बद्ध जीव के लिए पवित्र नाम का जप करना, शुद्ध नाम जप करना असंभव है। तो अपने आप को शुद्ध अवस्था में लाने के लिए हम अर्चन विधि का पालन करते हैं। अर्चन विधि से जो बद्ध जीव का मन हमेशा रेस्टलेस रहता है, रहता नहीं रहता, रेस्टलेस विचलित रहता है, लेकिन अर्चन विधि का पालन करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, और फिर यह हमें हरि नाम के जप में आगे उत्साह बढ़ाता है, हम हरि नाम के जप को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन आता है कि स्वयं जो गायत्री मंत्र है वो भगवान की रासलीला में गोपी बन के भगवान के राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र तो सीधा ही राधा कृष्ण का प्रेम है। इसका मतलब है जो गायत्री मंत्र है वो भी हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा करता है। जैसे कि अपने मॉडर्न टाइम से उदाहरण लें, अगर हम पहले जमाने में जो टू व्हीलर चलाते थे तो टू व्हीलर में पेट्रोल डालते थे, उस पेट्रोल से वो चलता है, लेकिन वो पेट्रोल का इंजन सही ढंग से काम करे उसमें हम टूटी ऑयल डालते थे, लुब्रिकेंट डालते हैं। तो इसी ढंग से हमारा हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे ढंग से हम जप कर सके, इसके लिए अर्चन विधि सहायक है। या एक रिष्ट पुष्ट स्वस्थ व्यक्ति खूब बढ़िया छप्पन भोग खाता है और आराम से डकार मार के पचा जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जठराग्नि बहुत कमजोर है वो बेचारा नहीं खा पाएगा, तो पहले वो मेडिसिन लेगा, दवाई खाएगा, अपनी जठराग्नि को प्रज्वलित करेगा, फिर वो छप्पन भोग का आस्वादन कर सकता है। इसी ढंग से हम दूषित अवस्था में हैं, हरि नाम का सही ढंग से जप कर सके, इस अपराध रहित होकर जप कर सके, अपने हृदय के अंदर जो हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं, भोगने की प्रवृत्ति है, उसको हम अपने सारे मन बुद्धि और शरीर को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, सारे के सारे पदार्थों को अर्चविग्रह की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी भोगने की प्रवृत्ति धीरे धीरे सेवा की प्रवृत्ति में बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए अर्चन विधि अति आवश्यक है। अर्चन विधि करने से एक कनिष्ठ अधिकारी के मन में दूसरे भक्तों से मित्रता करने की भावना जागृत होती है, यानी कि अर्चन विधि का सही ढंग से पालन करके एक कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी की ओर प्रगति करता है। श्रील भगवान कपिल देव भगवान तीसरे स्कंद में बोलते हैं, अगर कोई बहुत विधि विधानों से मेरे विग्रह की पूजा कर रहा है लेकिन बाकी जीवात्मा में मेरी उपस्थिति को नहीं देख रहा, तो उसका जो मेरे को आरती दिखाना है वो मेरे को जलाने के समान। अगर हम केवल अर्चन विग्रह की पूजा कर रहे हैं लेकिन बाकी भक्तों से हम द्वेष की भावना रख रहे हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर कोई 100 जन्मों तक बहुत विधि विधानों से अर्चन विग्रह की पूजा करता है तो फिर धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है, वो भक्तों की मानसिकता को समझना शुरू करता है और उसके हृदय में भक्तों की सेवा करने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। इतनी बद्ध अवस्था है एक कनिष्ठ अधिकारी के, इसलिए अर्चन विधि अति आवश्यक है। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भक्ति में भक्तों से संबंध बनाने के लिए और उत्साहित होते हैं। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत इतना गहरा है, दिखने में तो बहुत आसान है चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग, लेकिन गौड़िया वैष्णव सिद्धांत हमारे हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित तब होगा, ये टॉप मोस्ट फिलॉसफी है, हमारे हृदय में तब प्रकाशित होगा जब भक्तों के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर होंगे। तो अर्च विग्रह की पूजा हमारे को बहुत हेल्प करती है कि हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं। एक बार परम पूजनीय भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज अपने एक सेमिनार में बता रहे थे कि भक्तों के बीच में हमें कैसे घूमना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उन्होंने कहा जब किसी की नई नई ब्राह्मण दीक्षा होती है और वो जो आल्टर में प्रवेश करता है, तो कई भक्तों का अनुभव होगा, तो जैसे हम आल्टर में प्रवेश करते हैं हमारे अंदर मुख्यतः दो भाव होते हैं। सबसे पहले अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव कि उन्होंने मेरे जैसे ऐसे व्यक्ति को जो डिजर्व नहीं करता, मैं यहाँ ना भगवान के राधा राधिका रमन कृष्ण भगवान के इतने समीप होना मैं डिजर्व नहीं करता, लेकिन गुरु की कृपा से आज मैं यहाँ पे हूँ। और दूसरा भाव एक सच्चे भक्त में आएगा कि मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो कृतज्ञता का और सावधानी का भाव रहता है जब हम ऑल्टर में होते हैं। तो महाराज बता रहे थे सही यही भाव हमारा भक्तों के संग में होना चाहिए, कृतज्ञता का, मैं डिजर्व नहीं करता, इतने अच्छे लोगों के संग में रहना मैं डिजर्व नहीं करता, ये तो बहुत बड़ी कृपा है और मेरे को इतनी बड़ी कृपा मिल रही है इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए उनके बीच में। तो ये फॉर्मूला है, डीटी वर्शिप करेंगे अच्छे ढंग से तो हम इस भाव को अपने में अनुकूल कर पाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये साक्षात भगवान है, इनको कोई पुतले या मूर्ति नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं कि हम लोग मूर्ख नहीं हैं, लाखों लाखों डॉलर खर्च करके इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं कुछ गुड्डे गुड़ियों की पूजा करने के लिए, दिन में 6 बारी भोग लगा रहे हैं, 6 बारी आरती कर रहे हैं, इतने भक्त लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं किसके लिए, कुछ पुतलों के लिए नहीं, ये साक्षात भगवान है। एक बार ये परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो जो न्यू वृंदावन में नया उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो सेवा कर रहे थे, पुजारी की सेवा करते थे, तो एक बार उनके पिताजी उनको मिलने आए शिकागो से, बहुत लंबा सफर तय करके बड़ी कठिनाइयों से, न्यू वृंदावन एक फार्म कम्युनिटी था, वहाँ पर जब उनके पिताजी पहुँचे तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने देखा कि सामने जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के विग्रह हैं, तो उनके पिताजी बड़े हैरानी से देखा और अचानक रोने लगे, जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। तो राजन स्वामी माँ ने सोचा कि वाह, मैं तो रोज उनकी सेवा करता हूँ, मेरे अंदर ऐसे भाव नहीं आए, क्या कृपा है जगन्नाथ जी की, दर्शन करते ही मेरे पिताजी रो रहे हैं। तो बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले बेटा, इन गुड्डे गुड्डियों के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए इनके लिए। तो दिखने में डॉल्स लग सकती हैं, लेकिन पूरी शक्ति है, साक्षात भगवान है। भगवान का एक अवतार है अर्च अवतार। और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि भगवान अपनी अभिव्यक्ति पांच तरीकों से करते हैं। पहली पर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप, स्वयं रूप, उसको बोलते हैं पर। उसके बाद है चतुर्व्यूह, जो भगवान के चतुर्व्यूह हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, ये उनका एक दूसरी अभिव्यक्ति है। तीसरा है भगवान के लीला अवतार, उनको बोलते हैं वैभव प्रकाश। चौथा है भगवान का परमात्मा के रूप में अंतर्यामी होना। और पांचवा है अर्च अवतार। अर्च ये पांच भगवान के मुख्य विस्तार है। और जैसे जैसे भक्त उन्नति करता है, इन पांचों के पांचों विस्तार का वो साक्षात्कार करता है, अंततः स्वयं भगवान। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, एक नियोफाइट, एक कनिष्ठ भक्त की पूरी सुविधा के लिए अपने पांचों के पांचों विस्तार को भगवान अपने इस डीटी अवतार में, अर्च अवतार में सम्मिलित कर देते हैं। और इसलिए जब कोई कनिष्ठ भक्त अर्च विग्रह की पूजा करता है, अर्चना करता है, तो भगवान के पांचों विस्तारों की वो पूजा कर रहे हैं और उसको उसका साक्षात्कार होता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अर्चन विधि किसी भी कनिष्ठ अधिकारी बद्ध जीव के ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि भगवान तो पूर्ण रूप से दिव्य है, और जो एक कनिष्ठ भक्त है वो अभी भौतिक अवस्था में है, इस अवस्था से वो दिव्य भगवान की सेवा में जुड़ सके, भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भागवतम में 11 स्कंद में ये भी लिखा गया है कि अर्चन केवल वेदी से नहीं होता, अल्टर से नहीं होता, अल्टर के बाहर से भी अर्चन होता है। एक तो पुजारी अंदर है जो भगवान की अर्चना कर रहा है, और अगर कोई मंदिर हॉल में अल्टर के बाहर भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन और नृत्य कर रहा है, वो भी पुजारी के ही समान है, वो भी भगवान की अर्चना ही कर रहा है। तो पूरे भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें खूब सुंदर नृत्य करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, यही भी अर्चन विधि है। जिस प्रकार से अपेक्षा की जाती है कि अल्टर के अंदर वाले पुजारी को बहुत स्वच्छ होना चाहिए, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, वही स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स हमें कोशिश करने चाहिए। हम अगर अल्टर के बाहर हैं तब भी आंतरिक और बाहरी रूप से हम स्वच्छ हैं। हमें कोई ये फ्रीडम नहीं मिल जाती, हम तो अल्टर में नहीं हैं, हम दूषित अवस्था में मंदिर में आ जाए। आंतरिक रूप से स्वच्छता का अर्थ है कि जो भी हम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम नृत्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्च विग्रह की प्रसन्नता के लिए। अगर कोई पुजारी है पूरे बाहरी रूप से स्वच्छ है, तिलक लगाए हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से अर्चन विधि करते हुए अंदर से अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, तो वो केवल भक्ति स्नान से ढक करते केवल बोगस है। तो इसलिए अर्चन विधि मतलब पूरी भगवान की प्रसन्नता। अर्चन भक्ति विनोद ठाकुर जी जैन धर्म में बताते हैं कि ये जो अर्चन विधि है ये सभी धर्मों का आधार है एक मानव समाज के लिए। और ऐसे धर्म जिनमें अर्चन विधि नहीं बताई गई, उनमें जो शिशु उत्पन्न होते हैं या जो भगवान की पूजा में जुड़ते हैं, उनको कभी भी पूरे भगवत तत्व का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि कोई पर्सनल फॉर्म ही नहीं है जिसकी पूजा की जाए। और ऐसे लोगों में, ऐसे समुदायों में जाते या तो भौतिकतावादी ज़्यादा होती है या नास्तिकतावादी ज़्यादा होती है। इसलिए अर्चन विधि को पूरे मानव समाज में धर्म का आधार बताया गया है। और इस भगवान के अर्च रूप को भक्त लोग अपने अपने उन्नति के अनुसार अलग अलग रूप से देखते हैं। एक जो महाभागवत होगा, उत्तम अधिकारी होगा, वो इस अर्च विग्रह को देखते हैं चिन्मय रूप में, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, ट्रांसेंडेंटल। जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे होगा वो इस अर्च विग्रह को देखते हैं मनोमय रूप में। मनोमय रूप का अर्थ है कि ये मेरे मन की प्रार्थनाओं को जानते हैं, मेरे मन के भाव को पूर्ण रूप से समझते हैं। और जो कनिष्ठ अधिकारी है वो अर्च विग्रह को देखते हैं जड़मय रूप में, उसको लगता है ये तो केवल एक मूर्ति है। लेकिन मूर्ति मान के भी अगर वो उसकी पूजा में लगा रहेगा तो धीरे 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 उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और ये जो अर्च विग्रह की पूजा होती है ये पूर्ण रूप से शास्त्रों के आधार पर, ऐसा नहीं है मनोकल्पित कुछ भी एक रूप बना दिया, मनोकल्पित जैसे भी श्रृंगार कर दिया। जैसे बीच में खबर उड़ी थी ना वृंदावन में, बांके बिहारी जी को जीन्स डाल दी गई, टी शर्ट जीन्स और रेबन का गॉगल्स और हाथ में मोबाइल फोन, तो भक्त लोग समझते हैं कि मेरे पुजारी हमारे भाव ऐसे विकसित हो रहे हैं। अपने भावों की कोई वैल्यू नहीं है अगर हमारे भाव पूर्व प्रति आचार्य के अनुसार ना हो। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, हमें कह सकता कि आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान का यही रूप है, कैसे आप कह सकते हैं कि यही भगवान का रूप है, ऐसे ही इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे ही भगवान खड़े होते हैं, ऐसे ही मोर पंख लगाते हैं, ऐसे ही पोशाक डालते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? भक्तिनाथ ठाकुर जिसको उत्तर देते हैं कि जो महाजन होते हैं उनका हृदय, उनकी आंखें पूर्ण रूप से प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदय विलोकयन्ते, वो अपने हृदय में पूरे भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। और जब उनकी चेतना और विस्तृत हो जाती है तो इस संसार के प्रत्येक वस्तु में वो भगवान की उपस्थिति को देखते हैं, और फिर वो कृपा करके इस भगवान के रूप को वो शब्दों में बताते हैं या स्वयं उसका आकारित, उसको आकार फॉर्म देके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए जो अर्च विग्रह है ये महाजनों के द्वारा बताए हुए उनके साक्षात्कार के अनुसार ही ये अर्च विग्रह है। जैसे कि हम देखते हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को कौन से विग्रह दिए, राधा दामोदर, अपने हाथ से बनाकर उन्होंने दिए, क्योंकि वो हृदय में देख पा रहे हैं उसको, उसका दर्शन कर पा रहे हैं, और वही रूप उन्होंने जीव गोस्वामी जी को दिया। इसी ढंग से काशीश्वर पंडित को चैतन्य महाप्रभु भेजना चाहते थे रूप गोस्वामी जी की सहायता करने के लिए, गोविंद देव जी की पूजा की, तो काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त थे और वो जाना नहीं चाहते थे, बोले मैं आपके विरह में कैसे रहूंगा। तो महाप्रभु ने स्वयं अपना रूप प्रकट किया एक विग्रह रूप में और वो उनको दिया, इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और वो विग्रह कहलाते हैं श्री गौर हरि, जो कि अभी आप देखेंगे गोविंद देव जी के मंदिर में वो विग्रह आज भी उपस्थित है। तो इसलिए जब आचार्य या भगवान स्वयं उस विग्रह को देते हैं और महाजनगण हृदय में उनके दर्शन करते हैं और वो फिर कृपावश हमारे सामने उस रूप को प्रकट करते हैं। तो इसलिए सभी भक्तों के लिए ये नहीं केवल कनिष्ठ अधिकारी के लिए अर्चन विधि है, भक्ति की हर अवस्था में अर्चन का पालन करते हैं, उन्नत भक्ति अर्चन करते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद से धर्मार्जुन गोस्वामी महाराज ने पूछा कि भक्ति की नवधा भक्ति बताई गई है, लेकिन मैं तो ज्यादातर मैनेजमेंट करता हूं, तो मैनेजमेंट साधना भक्ति का कौन सा अंग है, क्योंकि लगता है मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही साधारण बातें, वही मीटिंग, सब कुछ मिनट्स बनाओ, मीटिंग्स करो, फॉलोअप करो, ये क्या है, ये तो ऑफिस में हम करते थे और ये संस्था में आके यही कर रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट भक्ति का कौन सा अंग है। तो शिला प्रभुपाद बताया मैनेजमेंट इज अर्चन, ये प्रबंधन है ये भी अर्चन है, इसको भी उतने ही सावधानी से करना चाहिए। एक बारी परम पूजनीय केशव भारती स्वामी महाराज आए तो मैंने पूछा महाराज मुझे तो बहुत डर लगता है मैनेजमेंट करते हुए, बहुत अपराध हो जाते हैं। तो केशव भारती महाराज ने कहा कि जिस ढंग से आप चैंटिंग बड़े अटेंटिवली करते हो जब, और श्रवण बड़े अटेंटिवली करते हो, इसी ढंग से मैनेजमेंट भी बड़े अटेंटिवली करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको सीखना चाहिए परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि कैसे वो बड़े अटेंटिव होकर मैनेजमेंट करते। तो ये अर्चन है, मैनेजमेंट भी जो भक्त करते हैं जिनको मैनेजमेंट की सेवा है उसको जाना चाहिए मैं अर्चन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं अर्चन में क्या है, गंध माला, वस्त्र, गंध माला, आभरण, भूषण, सब भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और मैनेजमेंट का अर्थ है जितनी भी वस्तुएं हैं कैसे भगवान की सेवा में उसको सही ढंग से लगाया जाए, सारे के सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाना, तो मैनेजमेंट भी अर्चन विधि है। अर्चन विधि के आचार्य कौन है? पृथु महाराज। और पृथु महाराज शक्तावेश अवतार हैं, जो कि भगवान के शासन करने वाले अवतार हैं, आदि राजा बताया गया उनको। तो इससे भी हम ये इन्फर कर सकते हैं, प्रशासन करना भी क्या है? अर्चन है। इसी ढंग से जैन धर्म में यह भी बताया गया है, एकादशी व्रत रखना, कार्तिक व्रत रखना, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना, यह भी अर्चन के अंदर ही आता है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि अभी तो मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो ही नहीं तो मैं तो अर्चन कर नहीं सकता। अगर हम प्रबंधन की सेवा कर रहे हैं, डीटी के सामने नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, कार्तिक व्रत का पालन कर रहे हैं, ये भी अर्चन है, और इसको भी हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस ढंग से इस अर्चन विधि से हमारा शुद्धिकरण होता है और हमारे अंदर जो भोगने की प्रवृत्ति है वो सेवा की प्रवृत्ति है। अब जैसे दूसरा यहाँ बताया गया है कि अदिति माता ने द्वादश अक्षर मंत्र का जप किया और हम लोग करते हैं षोडश अक्षर मंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही ईजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे, सबसे आसान और सबसे तीव्र तरीका है अपने लक्ष्य को पहुंचने का। और इतना आसान तरीका है केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। अगर समझ लीजिए किसी को पता चले, कुछ समय पहले तक तो व्यक्ति चारों नियम तोड़ रहा था, हर प्रकार के कुकर्म कर रहा था, भक्तों के संग में आया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया और कुछ ही वर्षों के बाद भगवत धाम भगवान के साथ खेल रहे हैं गोलक धाम में। क्या क्या ग्राफ है आप देखिए, कहां पड़ा था व्यक्ति और कहां पहुंच गया कुछ ही समय में, किसके बल पर? हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर। किसी योगी को भी मालूम चल जाए जो हिमालय की गुफाओं में 300 वर्ष से तपस्या कर रहा है, वो तो भगवान पे केस कर देगा। ये कैसा न्याय है? 300 साल से मेरी जटाएं देखो, मेरी तपस्या देखो, मैंने क्या क्या नहीं किया, और ये व्यक्ति कल तक मदिरा पान कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, मांसाहार कर रहा था, ये क्या हो गया? क्या किया इसने? केवल 16 माला का जब बस, और देखो कहां पहुंच गया और मैं अभी तक यहीं पे हूं। ये कैसा न्याय है? तो ये शक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र की, इतना शक्ति, क्विकेस्ट एंड द इजिएस्ट वे टू अटेन परफेक्शन। इसलिए हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, पूरा चेतना को इसमें लगा देना चाहिए, क्योंकि ये आसान तरीका है और हम भी बहुत इसको आसानी से लेते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है, अरे ये तो बहुत आसान है, क्या करना है? बस लिप्स को हटाना है, हिलाना थोड़ा सा, जस्ट मूव द लिप्स, मूव द टंग, और भगवत धाम पहुंच गए, जो मर्जी करते रहो। नहीं, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे हृदय में परिवर्तन ऑटोमेटिक नहीं होगा। भक्तों में कई बार ये गलत फहमी रहती है, दीक्षा ले ली है, प्रभुपाद जी की शरण में है, प्रभुपाद बड़े कृपालु है, वही ले जाएंगे भगवत धाम, रिलैक्स, आराम करो बस। नहीं, हृदय में परिवर्तन लाने के लिए, चेतना में परिवर्तन लाने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को, इस प्रोसेस में पूरे अपनी चेतना को लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा हमें डिपार्टमेंटल स्टोर मिल गया किसी मॉल में, बड़े मॉल में आपके हाथ में चाबी आ गई, बस जाकर केवल बैठ जाए, कुछ प्रयास ना करें तो कमाई नहीं होगी। एक प्रमाणिक संस्था में आ गए, प्रमाणिक गुरु परंपरा से हमें दीक्षा प्राप्त हो गई, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हमारे हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, चेतना में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन स्वतः नहीं होता। निम्न योनि से पहले हम जलचर थे, फिर पेड़ बने, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पक्षी, फिर पशु, इसमें ऑटोमेटिक होती है प्रोग्रेस, इसमें आप बैठे रहे बस। एक पेड़ है उसको चिंता नहीं करनी, उसको कोई साधना नहीं करनी कि अगली योनि में मुझे कीड़ा मकोड़ा बनना है। एक कीड़ा मकोड़ा है उसको साधना नहीं करनी या कुछ तपस्या करूं पक्षी बन जाओ, अपने आप ही स्वतः इवोल्यूशन होगा। लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद और प्रमाणिक भक्तों की संगति में आने के बाद हमारे प्रयास पर निर्भर करेगा, है ना, वॉलंटरी एफर्ट्स। तो किस प्रकार से हम जप करते हैं सारा इस पर निर्भर करता है। बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, पूरे संबंध ज्ञान जानते हुए कि नाम तत्व क्या है, मेरा हरि नाम से क्या संबंध है। जीवर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, जीवर स्वरूप होय हरि नाम दास, हम हरि नाम के दास हैं और हमें इसकी सेवा करनी है, और बहुत ध्यान पूर्वक जप होना चाहिए। Srila Prabhupada कहते हैं offenseless chanting means chanting under the direction of a spiritual master. गुरु के आदेशों के अनुसार हमें चैंटिंग करनी चाहिए. तभी हम देखते हैं कि दीक्षा के समय गुरुजन अक्सर 10 अपराधों का वर्णन करते हैं कि इससे बच के चलना चाहिए. लेकिन हम लोग इतना सुनते हैं अपराधों के विषय में कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम अपराधों से बचते हुए जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. इसलिए अपराध रहित जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए. और अधिकांशतः गुरुजन प्रभु अपने बुक पुस्तक जप में लिखते हैं अधिकांशतः हमसे अपराध हो जाते हैं अनजाने में. और सबसे ज्यादा अपराध होते हैं जब भक्त लोग आपस में ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं कैजुअल होने से कैजुअलिटी हो जाती है. और कोई किसी भक्त से पूछेंगे कोई भक्त कहेगा नहीं कि मैं अपराध करता हूँ. नहीं हम तो कुछ करते नहीं. ना मैं तो निंदा से बहुत बचता हूँ. मैं कुछ नहीं करता. लेकिन थोड़ा अपनी वीडियो बनाए साथ साथ में. आजकल सेल्फी तो नहीं कर सकते किसी को बोले हमारा पूरा ट्रैक रखे. जब भी हम भक्तों के बीच में ऐसे कैजुअल लोग कुछ बात कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता हमारे मुख से क्या निकल रहा है और हम क्या सुन रहे हैं. और कैजुअल होते होते हम इतने कैजुअल हो जाते हैं कि अपराध होना शुरू हो जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि हमें जप में रुचि क्यों नहीं आ रही. तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए. और भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया है कि जप करने से निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता. जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर पाते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते. अगर जप कर रहे हैं हरि नाम की चैंटिंग कर रहे हैं तो ये प्रभाव होना चाहिए. सारे रोम खड़े हो जाने चाहिए. हृदय में हर्ष होना चाहिए. आंखों से अविरल अश्रुधारा बहनी चाहिए. हालांकि ये ड्रामा नहीं वास्तविकता होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारा हृदय फौलाद का बना हुआ है. और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन नहीं आ रहे क्योंकि हमारी जो चैंटिंग है वो बड़ी ऑफेंसिव है. अपराधपूर्ण चैंटिंग है. इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. और अपराधपूर्ण चैंटिंग से बचने का पहला स्टेप है ध्यानपूर्वक जप करना. जब ध्यानपूर्वक जप के 4 अंग बताए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने. सबसे पहला है अर्ली मॉर्निंग जप. सुबह जल्दी से जल्दी उठे जितना जल्दी उठ सकते हैं. सुबह के समय जितना हम जप कर सकते हैं वो गेन है हमारा. और दूसरा है क्लियर प्रोनाउंसिएशन. एक एक शब्द को हम ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें. 16 अक्षर बोलें उसमें कटौती ना करें. उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. 16 अक्षर 32 शब्द बोलने चाहिए. अक्सर भक्त लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम कुछ भी. तो 16 शब्द पूरे बोलने चाहिए. यही बहुत बड़ी तपस्या. अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पता चलेगा हम 16 शब्द भी कई बार नहीं बोल रहे होते. कई भक्त लोग अपने जब की रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में सुनते हैं तो हमें मालूम चल सकते हैं. हम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं. तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन. और तीसरा है फुल कंसंट्रेशन. पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारा. और चौथा है अटेंटिव हियरिंग. उसको पूरा सुने. चैंटिंग मीन्स हियरिंग. चैंटिंग मीन्स हियरिंग. सुनना है सुनना है सुनना है. तो आप लोग जपा पुस्तक पढ़ सकते हैं गुरुजन प्रभु की. वो बहुत इसमें सहायक होगी. और ये जो जप करना है एक जीव का सनातन धर्म है. जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं तो जप करना हमारी मुख्य सेवा है. बाकी जितने भी भक्ति के अंग हैं वो इस जप की सहायता करने के लिए है. लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो सेवा फोरग्राउंड में फोरफ्रंट में आती है और हरि नाम पीछे हो जाता है. तब भी जप चलेगा कीर्तन चलेगा लेकिन मुख्य पहले राधा कृष्ण की सेवा है. जैसे कि यशोदा माता या गोपियां भगवान के लिए मक्खन बना रही हैं साथ साथ में भगवान का गुणगान कर रही हैं. लेकिन यहाँ पर हम ये ना करें. यहाँ पे भक्त लोग कई बार सेवा के साथ साथ हरे कृष्ण ही. यहाँ पे मुख्य हमारी सेवा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना. और बाकी जितने भक्ति के अंग हैं श्रवण कीर्तन अर्चन पाद सेवन वो इसलिए है कि हम अपने जप को अच्छे ढंग से कर सकें. तो और जितना हमारी ये चैंटिंग कि हम ग्लोरियस को सुनेंगे महिमा को सुनेंगे. ईश्वरपुरी महाराज मैंने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देने के बाद ये आदेश दिया कि आप भागवतम का पाठ बहुत ध्यानपूर्वक करो. भागवतम का ध्यानपूर्वक पाठ करने से आपको हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगी. तो शास्त्रों के ध्यान पूर्वक अध्ययन से जब शास्त्रों में हरि नाम की महिमा सुनते हैं तो उनसे हमारी हरि नाम के प्रति आसक्ति बढ़ती है। हरि नाम की महिमा को हमें कोई कल्पना नहीं समझना चाहिए, और हरि नाम की महिमा अपने तर्क से अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। हरि नाम की महिमा हम जान सकते हैं श्रद्धा से, भक्ति से और निरंतर जप करने से। जितना ज्यादा जप करेंगे, श्रद्धा से जप करेंगे, उतनी हम हरि नाम की महिमा को समझ पाएंगे। तो इसलिए आज के श्लोक में अष्ट विग्रह की सेवा और हरि नाम के जप के ऊपर महत्व दिया गया, और इसको बहुत ही कॉशियसली और कॉन्शियसली करेंगे तो हम इसके प्रभाव को प्राप्त कर पाएंगे। अंत में दो मिनट में एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली एक कथा है विठ्ठल भगवान की, हमें कल एक लेक्चर में सुनी थी हमने। तो विठ्ठल भगवान पंडरपुर में भक्त लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, तो एक दिन भक्त लोग देखते हैं कि भगवान के अर्च विग्रह से अविरल आंसू बह रहे हैं, विठ्ठल भगवान रो रहे हैं। तो भक्त लोग बहुत परेशान हो गए कि भगवान आप रो रहे हैं, आप तो सच्चिदानंद हैं, आप रो क्यों रहे हैं? और फिर भगवान बोले भी, भगवान चाहें तो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान बोले कि मैं अपने एक भक्त को बहुत मिस कर रहा हूँ, उसके विरह में हूँ। मैं कौन है आपके वो भक्त? मैंने उस भक्त का नाम है चौका मेल। ये चौका मेल जो है ये बहुत एक साधारण श्रमिक था, लेबरर था, जो कि सामान उठाता था, बिल्डिंग बनाने के लिए काम करता था। तो बोले क्या हो गया आप, उसको क्यों विरह हो रहा है? कहते अभी उसने शरीर छोड़ दिया। और क्या हुआ? बोले वो काम कर रहा था, एक दीवार गिर गई, उस दीवार से कई के कई लेबर एक साथ उनकी मृत्यु हो गई। तो भक्तों ने पूछा हम क्या कर सकते हैं उनकी सेवा के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए? तो विठ्ठल भगवान ने बोला उस चौका मेल की एक इच्छा थी कि जब वो शरीर त्यागे तो उसके जो शरीर को यहीं पे उसको गाड़ा जाए, यहीं पे उसका संस्कार हो, तो आप जाओ और उसके मृत शरीर को लेके आओ। भक्तों ने बोला वो तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, कई लोग एक साथ मरे हैं, उनका तो इकट्ठा संस्कार कर दिया गया, अब हम उनके शरीर को कहाँ से ढूंढेंगे? भगवान ने कहा बहुत आसान है, उसके शरीर को पहचाना बहुत आसान है। जीवन भर उसने मेरे नाम का बहुत प्रेम पूर्वक जप किया, असहाय अवस्था में जप किया, बहुत ध्यान पूर्वक जप किया। तुम जाओ उन हड्डियों के ढेर से, उन हड्डियों को लोग जाओ और ढूंढो, उनकी हड्डियों से तुम्हें मेरे नाम सुनाई देगा। भगवान ने ऐसा कहा, भक्त लोग भाग के गए, वहां तो हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, मास क्रीमेशन हुआ था, क्योंकि भगवान का आज्ञा थी। भक्तों ने एक हड्डी को उठाया और सुना, और कुछ हड्डियों से आवाज आ रही थी जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल, और उन हड्डियों को लेकर आए भगवान के सामने, उनकी समाधि बनाई गई। तो ये है, तो इसी ढंग से हम देखते हैं इस्कॉन संस्था में भी और बाकी और दिव्य संस्थानों में भी, जो सन्यासी हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अगर हम बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जैसे कि श्री बाबा जी के गुरु भाई अकिंचन दास बाबा जी, अकिंचन कृष्ण दास बाबा जी महाराज, एक बार उनको कहा जाता है कि अकिंचन कृष्ण दास बाबा जी के पीठ पे जब कान लगाए गई तो पीठ से भी आवाज क्या आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और हमारे लिए इस प्रोसेस ने अपनी शक्तियों को सीमित नहीं किया होगा। कई बार भक्तों को ये लगता है, कहा जाता है हरि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नहीं हम तो इतना जप कर रहे हैं, हमें तो कोई रुचि आ नहीं रही, लेकिन जो कृष्ण नाम है अपने आप को प्रकट करेगा अगर हम कृष्ण नाम की तरफ ध्यान देंगे, अगर हम कृष्ण नाम को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कृष्ण नाम निश्चित रूप से अपने आप को प्रकट करेगा। इसके स्मोनव को कहते हैं हमारी इस जप माला में पूरा आध्यात्मिक जगत है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, पूरा का पूरा गोलक वृंदावन इस जप थैली में है। बस हमें इस शक्ति को प्राप्त करना है, अपना ध्यान देके अपनी चेतना को इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कृष्ण निश्चित रूप से अपने आप को रिवील करेंगे। अर्च विग्रह भी इसलिए खड़े हैं, परम पूजनीय भक्ति माधव गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं अर्च विग्रह की प्रकृति है कृपा को बांटना। ये तो मौका ढूंढ रहे कब कोई भक्त मेरे पास आए मैं कृपा बांटूं, अगर हम जाएंगे प्रार्थना करते हैं तो अर्चकगण प्रार्थना सुनते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। हमें क्या करना है, जो आचार्य द्वारा विधि बताई गई है उसको बहुत सावधानी पूर्वक और पूरी चेतना के साथ इसके उद्देश्य को जानते हुए उन्हें उसका पालन करना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। Questions or comments?
जैसे गायत्री मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का बताया है, गायत्री मंत्र हेल्प करता है महामंत्र लेने में, तो महामंत्र को ये भी बताया कि वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है किसी भी साधक के हेल्प करने के लिए, और बल्कि ऐसा उल्टा लगता है कि गायत्री मंत्र में तो शायद ज़्यादा अपराध होता जाए, गायत्री मंत्र में शायद ज़्यादा अपराध या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा देन हरे कृष्ण महामंत्र, तो अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पर्याप्त है और पूर्ण स्वतंत्र है तो हम किसी और मेथड की शरण नहीं ले रहे कि हरे कृष्ण को चैंट करने के लिए।
नहीं नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हो अगर हम अर्चन विधि कर ले रहे हैं, गायत्री मंत्र ले रहे हैं, तो क्यों हम शरण नहीं ले रहे हैं? जैसे बताया गया कि सारे के सारे बाकी विधियाँ ऑक्सिलरी हैं, सपोर्ट करने के लिए हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है, हमारा माइंड इतना रेस्टलेस है कि हम जब कर ही नहीं पाते। उस माइंड को स्टेबल करने के लिए, सतोगुण में अवस्थित करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र इतना लिबरल है, इतना उदार है कि कोई नियम नहीं चाहिए, नाम नाम कार्य बहुधा तत्र नियम में स्मरण ना करना, कोई स्मरण का काल नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र में नियम है और उन नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हम सतोगुण में अवस्थित होते हैं और फिर हम अच्छे ढंग से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। और किसी भक्त पे बहुत बड़ी कृपा है तो बिना गायत्री मंत्र के भी हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते, हमारी कंडीशनिंग इतनी है।
कंडीशनिंग को हटाने के लिए महामंत्र के सहारे
नहीं, महामंत्र अपने आप पर्याप्त होगा बट इट टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि हम बहुत ऑफेंसिव होंगे, वो उन ऑफेंसिस को कम करने के लिए सतगुण में अवस्थित करने के लिए गायत्री मंत्र हेल्प करता है। वी वांट टू अटेन परफेक्शन विद इन वन लाइफ, फटाफट। यस,
हरे कृष्ण। 10 नाम अपराधों में से एक नाम अपराध है कि बहुत कृष्ण नाम की महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि भौतिक आसक्ति तो है ही हमारे अंदर और वो नाम ले लेके हटेगी, पर इस नाम अपराध का मतलब ये है कि भौतिक आसक्ति बनाई हुई है तो उससे हमारे नाम में रुचि नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप क्लैरिफाई कर पाए।
हाँ, भौतिक आसक्ति बनाए रखने का मतलब है कि अपनी एंजॉयिंग मेंटेलिटी बनाए रखना। हम भक्ति के प्रोसेस को भी पालन कर रहे हैं एंजॉयिंग मेंटेलिटी के साथ, भोक्ता वृत्ति के साथ। हमें जप करना है, श्रवण करना है, अध्ययन करना है, अर्चना करना है सेवा की भावना से, ना कि भोग की भावना से, क्योंकि हमारे अंदर भोग की जो प्रवृत्ति इतनी प्रगाढ़ है, हम जो भी कार्य करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने को अपने लिए, वी वॉन्ट जस्ट लॉर्ड इट ओवर एवरीथिंग। तो ये प्रोपेंसिटी बनाए रखना, भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन इस प्रोपेंसिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं कर रहे, इसी को बनाए रखने इसीलिए भक्ति कर रहे हैं कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तो ये बहुत बड़ा अपराध है।
तो जी इसके एग्जांपल दे सकते हैं कि भक्ति में एंजॉय कैसे करते हैं?
बहुत बड़े काम, सो मैनी एग्जांपल्स। हम कीर्तन करते हैं, लेट्स डू साउंड वेरी नाइस, आई हैव वेरी नाइस वॉइस, आई कैन सिंग वेरी मेलोडियस ट्यून्स, हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ मे बी, और अर्चना भी करते हैं जस्ट टू शो आई एम द बेस्ट पुजारी, लेक्चर देते हैं टू शो आई एम द बेस्ट स्पीकर, प्रसाद पाते हैं देखते हैं कौन सी चीज़ मेरी पसंद की है, सो एवरीथिंग जस्ट फॉर माई ग्लोरीज। सो ये तो ये रहना एक बच्चे के लिए नेचुरल है, ऐसी मेंटेलिटी इसको बनाए रखना वो अपराध है, इसको हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसीलिए इससे बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पता नहीं, मैं एग्जाम्पल आपका समझ नहीं पाया। कि पेट्रोल के बिना तो रॉयल साइंस चढ़ेगी नहीं,
हाँ
ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, फिर तो डिपेंडेंट होगी ना, ऐसा नहीं है कि हरी नाम गायत्री मंत्र के बिना चलेगा. नहीं, हरिनाम अपने आप में स्वतंत्र प्रोसेस है, ये हम अपने लक्ष्य तक ले जाने में सक्षम है पूर्ण रूप से, लेकिन हम इसमें गायत्री मंत्र ऐड करते हैं ताकि हम हमारी जो त्रुटियां हैं वो हरिनाम के जप में बाधा ना डालें. आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की भारत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ श्रीमद भागवतम के गौर प्रेमानंदे.